आगे आप ये मजमून पूरा होने की तरफ आ रहा है, आयत नंबर 270 से 74 तक। वमा अनफक्तु मिन नफकतिन औ नज़रतु मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाहा यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। तुम जितना कुछ खर्च करो यानी खैरात, और जो कुछ नजर मानो, इसे अल्लाह ताला खूब जानता है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर तुम सदके खैरात को जाहिर करो तो वो भी अच्छा है, और अगर तुम इसे पोशीदा पोशीदा मिस्कीनों को दे दो तो ये भी तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल की खबर रखने वाला है। इन्हें हिदायत पर ला खड़ा करना आपके जिम्मे नहीं, बल्कि हिदायत अल्लाह ताला देता है जिसे चाहता है, और तुम जो भी भली चीज़ अल्लाह की राह में दोगे इसका फ़ायदा खुद पाओगे। तुम्हें सिर्फ अल्लाह ताला की रजामंदी की तलब के लिए ही खर्च करना चाहिए। तुम जो कुछ भी माल खर्च करोगे इसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा, और तुम्हारा हक ना मारा जाएगा। हम भी किसी का हक ना मारे। सदकात के मुस्तक सिर्फ वो गुरबा हैं जो अल्लाह की राह में रोक दिए गए, जो मुल्क भर में चल फिर नहीं सकते। नादान लोग इनकी बेसवाली की वजह से इन्हें मालदार ख्याल करते हैं। आप इनके चेहरे देख कर क्याफे से यानी निशानियों से इन्हें पहचान लेंगे। वो लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते। तुम जो कुछ माल खर्च करो तो अल्लाह ताला इसका जानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह 273 पर हमारा रुख पूरा हुआ, 1/4 पारा हो गया। सोचिए जरा हमने इस पूरे वक्त में क्या लिया। कुछ शेयर करेंगे, कोई एक आधी बात जो आपको लगा हो कि आपने इससे फायदा उठाई। जी ठीक है, सदका सिद्क है, सच्चाई है। और जी आप दिखावे से बचना, माल के सदके से पहले जुबान का सदका। शाबाश, ये बहुत अच्छी बात नोट की आपने, और हिकमत। चलिए आगे चलते हैं। जो लोग अपने मालों को रात दिन छुपे खुले खर्च करते हैं, इनके लिए इनके रब्बे ताला के पास अजर है, और इन्हें ना कोई खौफ और ना कोई गमगीनी। पहले तो दुआ करें अल्लाह हमें बेखौफ कर दे, टेंशन फ्री कर दे, स्ट्रेस फ्री कर दे। आज के दौर का एक बहुत बड़ा गम क्या है कि लोग खुश नहीं, गमजदा हैं। इन आयात में क्या है, क्योंकि यहाँ सदके की आयात जो है वो पूरी हो रही है, तो पहली बात तो क्या है कि ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपकी नज़र में गफलत का शिकार हैं, फिर उनकी हिदायत के लिए अल्लाह से खूब दुआएं मांगें। मुमकिन अल्लाह ताला आपको इसके अजर से नवाज दे। सोचिए जरा मैंने क्या बोला, कुरान क्या कहते हैं, लैसा अलैका हुदा वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। हम क्यों किसी को गुनाहगार कहें? आज आप सबको मैं काम दे रही हूँ, किसी ऐसे इंसान, कोई दोस्त है, कोई खानदान में, कोई कजन है, कोई फैमिली मेंबर है, गली मोहल्ले में, जो आपके ख्याल में हिदायत से दूर है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती, कोई सिगरेट पीता है, कोई कुछ भी गलत चीज़ों को सोच ले, उसके लिए रात की तन्हाई में दुआ करनी है। करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक वाक्य सुन रही थी, एक टीचर थे तो वो सुना रहे थे कि एक लड़का था, कोई किसी भी कौम से था, तो वो बहुत पढ़ता लिखता कुछ नहीं था, जो भी था, तो माँ बाप ने उसको किसी मदरसे में डाल दिया कि इसको हिफ्ज करा दें। 3 साल में उसने बमुश्किल 30वां पारा याद किया, और जब सुना तो उसमें इतनी गलतियाँ, तो ये कहते हैं कि मुझे बहुत ही दुख हुआ कि इसका इतना वक्त लगा, और हर बंदा उसको टोक रहा है, टीचर्स भी रोक रहे हैं, निकम्मे हो, तुम्हारी वजह से हमारे मदरसे का नाम बर्बाद हो रहा है, यानी हमारी बदनामी हो रही। उस मदरसे वाले ने उसको निकाल दिया, इसकी वजह से हमारी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, अब क्या करें। ये कहते हैं कि मैं उसको उठाकर एक और जगह ले गए, एक और मदरसा था, मैंने उसमें भेज दिया कि इस बेचारे को इधर रख लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। 3 साल के बाद उसने उस मदरसे से पूरा कुरान हिफ्ज़ किया, और कैसा हिफ्ज़ किया, एक होता है सीधा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये ईजी है, लेकिन उल्टा क्या होता है, मालिक यौमिद्दीन से ऊपर अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़े से बड़ा हाफिज़ भी नहीं कर सकता, बहुत करते, बहुत अच्छा हाफिज़ और सब टॉपर्स मेरा। ये कहते हैं कि मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने कहा कि मुझे अपने मदरसे वालों के पास ले जाओगे, उसके टीचरों को बुलाया, कहने लगा कि मैंने उसके टीचर से पूछा कि ये बताओ कि ये बच्चा 3 साल में उधर रोज धो के 30वां पारा कर रहा था, और वो भी बड़ा ही कच्चा पक्का, तुमने क्या किया, मतलब तो मिसाल है बादाम खिलाए हैं, खशखाश खिलाई है, इसका हाफ़ज़ा कैसे तेज़ हो गया। कहने लगा नहीं, ये और इसके सारे दूसरे साथी जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं वो आम लोग हैं, मैं क्या करता हूँ, पहले जब मेरा वक्त होता है पढ़ाने का मैं इनको खूब पढ़ाता हूँ अच्छे से, अच्छा मेहनत कराता हूँ, वक्त देता हूँ, फिर जब वो सब अपना वक्त गुजार के चले जाते हैं ना, तो मैं रात की घड़ियों में अकेले में एक एक का नाम लेके दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको याद दिला दे, और ये अगले दिन आते हैं तो इनको याद होता है। मुराद है उस्ताद की दुआ। अपने शागिर्दों को दुआओं से कभी महरूम ना करें, और शागिर्द वो बने कि जिनके लिए उस्तादों के दिल से दुआएं निकलें। इसी तरह अपने बच्चों के साथ भी कीजिए, बच्चों को दुआएं दें। हम सलवाते देते हैं ना, हालांकि उनको दुआएं देने की ज़रूरत होती है, तो हमेशा ऐसे लोगों के लिए दुआ कीजिए। अगला अमल लिखिए, अपना कोई गुनाह याद कीजिए और सदका दीजिए, और इस सबब से अल्लाह करे कि अल्लाह आपका वो गुनाह माफ़ कर दे। तीसरा अमल ये कि ऐसा कोई नेक काम तलाश कीजिए जिसे करने में लोग सुस्ती बरत रहे हों, आप इसे फौरन कीजिए और लोगों को इसके बारे में बताइए ताकि दूसरे भी उसको करें और आपको उनको बताने का अजर मिले। कुरानी रहनुमाई क्या है? आमाले सालेह को छुपा कर करना और अलल ऐलान करना दोनों ही ठीक हैं, लेकिन वक्त और हालात के मुताबिक छुपा कर करना बहरहाल ज़्यादा सिक्योर होता है। ये पता चला, यानी अपनी जो नेकियां छुपा सकें उनको छुपाएं। फिर इसी तरह दाई और मुबल्लिग ऐसे तरीके से लोगों को दावत दे कि लोग उसकी दावत को कबूल भी करें और अपनी बुराई भी छोड़ें, और उसके साथ साथ उनके दिल में नेकियों का मजीद जज्बा है। ऐसे दाई ना बने कि लोग आपसे जान छुड़ाएं और गुनाहगार होकर आपकी महफिलों से उठें। फिर इसी तरह से अपने आप को पाक दामनी और लोगों से ना मांगने का आदी बनाइए। नीयत करें, इरादा करें, मैंने कभी ज़िंदगी में किसी से कुछ नहीं मांगना, उनके सामने अपनी हाजतें नहीं रखनी, हमेशा अपनी इज्जत कायम रखें, सब है मेरे पास, अल्लाह का शुक्र है। मालदारी लगे, लोग यहाँ बहुत पैसे वाले हैं, चाहे आपका कुछ भी ना हो, और बेन्याज हो जाए लोगों से, लोगों का न्याजमंद हमेशा मजबूरी रहता है। फिर गौर व फिक्र के गोशों में से लीजिए, बहुत प्यारा नुक्ता है, क्या सखी और मेहरबान आदमी जब कभी लड़खड़ाता है तो अल्लाह उसका हाथ थाम लेता है, ये पक्की बात है। बंदे में सहावत होती है लेकिन उसके साथ नेकियां बदियां चलती हैं। ऐसा बंदा अगर कभी किसी वक्त दीन से पीछे होने लगे, कोई उसके अंदर कमी है ना, अल्लाह उसका हाथ थाम के उसको ऊपर ले आता है। तो फिर सखावत करिए, दिल खोलिए और नेकियों में कसरत कीजिए। फिर इसी तरह से अगली बात नोट कीजिए कि अगर कभी किसी जगह दिखावा किया था, रियाकारी की थी, तो अब उसके बदले में कुछ ऐसे काम कीजिए जिसकी किसी को भिनक ना लगे। और ख़ास तौर पे फिर अगली बात नोट कर लें, इल्लतिगा वजह अल्लाह, अल्लाह ताला की खुशनूदी की तलब में कोई ऐसा काम कीजिए और अल्लाह से कहिए कि अल्लाह ताला आप मेरे से इसके बदले में राजी हो जाएं। फिर उसके बाद ये जो लिल फुकराए लजीना वाली आयत है ना, ये होस्टलाइट्स की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुल टाइम लोग असहाबे सुफ़ा थे जो दिन में कुरान पढ़ते थे, रातों में वहीं जाके सो जाते थे। जब कभी जिहाद की कॉल आई तो यही आर्मी बन गए। ये दीन का मिजाज बहुत कम लोगों को पता है, जो कुरान पढ़ेंगे ना वो ही जिहाद करेंगे। आज हमने कैटेगराइज कर दिया, इसीलिए कितने फितने खड़े हो गए। कुरान पढ़े बगैर रूह जिहाद की जिंदा ही नहीं होती। शहीद होने को दिल करता है, अगर आपने पिछले कल वाले पारे की आयतें ना सुनी होती, शहीद होना कितनी बड़ी नेकी है, कौन होगा जो कुरान पढ़ेगा। तो क्या पता चला कि वो लोग जो अपने आप को इल्म के लिए डिवोट करते हैं, जो अपने आप को इल्म के लिए आजिज करते हैं और रहते हैं, आप उनको ढूंढिए और आप उनके साथ इस तरह का मामला कीजिए कि उनको एहसास हो कि हम अल्लाह के दीन को सीख रहे हैं, हम अल्लाह के दीन के साथ चिपके हुए हैं, हमारी ज़रूरियात अल्लाह खुद ही पूरी करेगा, हम इन लोगों के सामने कभी भी हल्का नहीं पड़ेंगे। यानी आप देखिए, आज सड़कों पे खड़े फकीर कितने हैं, बैगर्स कितने हैं, और आज भी मदरसों में भरे पड़े लोग हैं बेचारे। कई मुजाहिदीन हैं जो बेचारे जिहाद में गए, पीछे से क्या मामला हुए, तो वो लोग जो घरों में जिनके बच्चे हैं और वो खुद जिहाद में, उनको ढूंढिए। मुजाहिदीन के खानदानों की कुंबा परवरी करना है, ऐसे ही है जैसे आप जाके मैदान जंग में लड़े। आज आपके मेरे लाइफस्टाइल में बहुत कम वाक्य हैं कि हम सब के घरों में से कोई जिहाद पे गया हो, लेकिन आप मुजाहिदीन पे खर्च कीजिए। आजकल कितना आसान है, आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म को ढूंढिए, दुनिया में वर्ल्ड वाइड कंपनीज हैं, आप भेजिए, दुनिया के किसी कोने में भेजें, और वो अल्लाह को भेज रहे हैं, आप बंदों को नहीं दे रहे। और इसी तरह से फिर आखिरी बात नेकी का जब मौका आ जाए तो रात और दिन का फर्क ना देखे, बल्कि बिल्लईलिवन नहारी सिर्रुम व अलानिया, छुपा के जाहिर करके हर तरह से दीजिए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खर्च की बातें पूरी हुई। अब अगली आयत सूद से मुतल्लिक है, 275 से 281 तक देखेंगे। यानी पहली आयतें बेहतरीन किस्म थी खर्च की, सदका, अब बदतरीन चीज़ है सूद। आइए पढ़ते हैं, फिर इन दोनों के बीच की दो चीज़ें और भी हैं वो आगे आने वाली हैं, क्योंकि इस आयत का सिर्फ तर्जुमा इस मौजू की संगीनी को बयान करने को काफ़ी है। इसमें लफ्ज़ हराम भी आना है, इसमें सूद को ख़त्म करने की भी बात है और बहुत कुछ। अल्लज़ीन याकुलून अर्रिबा ला यकूमून इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। सूद खोर लोग ना खड़े होंगे मगर इसी तरह जिस तरह वो खड़ा होता है जिसे शैतान छू कर खपती बना दे। ये इसलिए कि ये कहा करते थे कि तिजारत भी तो सूद ही की तरह है, हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम। जो शख्स अपने पास आई हुई अल्लाह ताला की नसीहत सुनकर रुक गया, इसके लिए वो है जो गुजरा और इसका मामला अल्लाह ताला की तरफ है और फिर दोबारा हराम की तरफ लौटा, वो जहन्नमी है। ऐसे लोग हमेशा ही इसमें रहेंगे। तो सूद की बातें यहाँ से शुरू हुई और आप देखेंगे ये आपको आगे सूरत रूम तक दिखेंगी। अल्लज़ीन याकुलून अर्रिबा, तीन चीज़ें, तिजारत, सूदी लेन देन और कर्ज। तिजारत मुफीद है, फ़ायदेमंद है, माशरे का इकोनॉमिकल बैलेंस कायम रहता है। सूदी लेन देन बदतरीन है, नुकसानदेह है, अल्लाह और रसूल के साथ जंग के मुतरादिफ है, और कर्ज में बिला वजह पड़ना नहीं चाहिए। अगर पड़ जाए तो वक्त पे फौरन उसको अदा करने की नियत होनी चाहिए। आयत 276 को जरा तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदके को बढ़ाता है। अल्लाह ताला किसी नाशुक्री और गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता। बेशक जो लोग ईमान के साथ सुन्नत के मुताबिक नेक काम करते हैं। ये आयत का टुकड़ा बताता है कि सूदखोर को दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए क्योंकि अल्लाह और रसूल के साथ मुकाबले पे आ गया। फिर नमाजों को कायम रखते हैं और जकात अदा करते हैं, इनका अजर तो इनके रब के पास है। इन पर ना तो कोई खौफ होगा, ना गम, ना उदासी। आपने देखा माली मामलात के साथ बार बार आयत आ रही है, ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, इसलिए कि अमूमियत के साथ देखा गया लोगों को अक्सर गम माल का ही होता है, या कमाने का, या ना होने का, या चोरी ना हो जाए। अल्लाह ताला ने आपको इतना प्यारा तरीका बता दिया कि जिससे आप बेगम हो जाएंगे। फिर आगे ईमान वालों को ज़रा खिताब किया गया, सुनिए। और इसको सुनने से इसके बाद मुझे एक भी लफ्ज़ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रुल बैय। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया उसको छोड़ दो। अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह ताला से और इसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। और अगर कोई तंगी वाला हो तो उसे आसानी तक मोहलत देनी चाहिए और सदका करो, तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है अगर तुम्हें इल्म है। और इस दिन से डरो जिसमें तुम सब अल्लाह तआला की तरफ लौटाए जाओगे और हर शख्स को इसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और इन पर जुल्म ना किया जाएगा। यानी कर्ज दे दो लोगों को लेकिन सूद पे ना पहुंचो तो क्या पता चला। आइए देखिए अमल की बातें। एक ऐसा पैगाम भेजिए अपने किसी ऐसे प्यारे को जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो, जिसमें सूद की बुराई का तस्करा हो। इस तरह की छोटी छोटी एक्सरसाइजी से आप देखिएगा कि आपकी जरूरत बढ़ेगी। इसी तरह से सूदी मामला करना कराना इतना संगीन मामला, मुझे इसका इल्म नहीं था, आज इल्म हुआ, लिहाजा मैं अपना जायजा लूं कि मेरे किसी मामले में जाहिरी या बातनी थोड़ा या ज्यादा सूद का कोई मामला तो नहीं, और अगर निकले तो फौरन से पहले उससे जान छुड़ाइए। फिर पांच वक्त नमाजों को पाबंदी से अदा कीजिए क्योंकि यहाँ नमाज की बात आई, और तंगदस्त की मदद कीजिए या उसके कर्ज की अदायगी के लिए लोगों से सिफारिश कर दीजिए क्योंकि वह इनका नजू उस रतिन फनजीरतन इला मैसरा की बात हुई। कुरानी रहनुमाई लेते हैं, सूदी मामला करने वाला हक की तरफ रहनुमाई करने वाली हिकमत से महरूम हो जाता है, यानी उसकी मत मारी जाती है। दूसरी बात, हराम माल की बरकत खत्म हो जाती है और उस बंदे की बिल आखिर दुनिया भी खत्म हो जाती है, आखिरत का नुकसान तो आगे है। इसके बरक्स सदके में इससे ऑपोजिट बात बनती है, फिर इस आयत को बकसरत पढ़े ताकि दिलों में बैठ जाए क्या, वत्तकु यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून। ये आयत आखिरी आयत समझी जाती है। कसरत से पढ़िए कि मैंने अल्लाह के पास जाने और वहाँ मेरे से हिसाब लिया जाएगा। गौर व फिक्र ज़रा कीजिए, अल्लज़ीना याकुलूनर रिबा पे तसव्वुर में लाइए, कब्र फटी, कब्र में से एक पागल दीवाना मजनू टाइप झूमता हुआ निकल रहा है, मुंह से राल निकल रही, खून टपक रहा, कपड़ों पे गंदा क्या। इस मंजर को जहन में बिठा लें कि सूद खोर का लहले महशर की नजरों में किस कदर काबिले नफरत होगा। फिर इसी तरह से अगली बात जो इसमें गौर व फिक्र की है वो क्या है कि माल की मोहब्बत इतना बंदे को दीवाना कर दे कि पहले से और है फिर भी जरूरतमंदों से और मांगा जाए, और जिसके पास नहीं उसका सोचिए कि उसका क्या हाल होगा। क्या पता चला, असीम और कफार दो सुपरलेटिव डिग्री मतलब मुबालगे के सीगे यहाँ इस्तेमाल किए गए, इससे इस गुनाह की शिद्दत समझ आती है। और यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात से हमें गौर व फिक्र क्या करना है कि सूद खोर से ना अल्लाह सदका कबूल करता, ना जिहाद, ना हज और ना उसका सलूक। ये इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला ने इस आयत पे कहा कि यानी सूद के काम करने वालों की कोई नेकी भी कबूल नहीं होती, ना उसकी सिला रहमी कबूल होती है। और युर्बिस सदकात क्या है कि दुनिया में उसे बाबरकत और फायदा मंद बनाता है और आखिरत में उसको कई गुना बढ़ाकर अजर भी देगा। अल्लाह ताला हमें इन सारी कबाखतों से महफूज रखे। और इसी तरह से एक चीज़ और इसमें से नोट कर लीजिए कि जिस बंदे को ये यकीन हो कि मैंने अपने रब के पास जाना है और मेरे छोटे बड़े जाहिरी बातनी सारे अमाल खुलेंगे, वो कभी भी दुनिया में अपने ऊपर और किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं करेगा। इसके बाद आगे है जी आयते दैन, तवील तरीन आयत कुरान पाक की 282। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फ़क्तुबू। ऐ ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रा पर कर्ज का मामला तय कर लो तो इसे लिख लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखे, कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार न करे जैसे अल्लाह ने उसे सिखाया, बस इसे भी लिख देना चाहिए, और जिसके जिम्मे हक हो वो लिखवाए और अपने अल्लाह तला से डरे जो इसका रब है और हक में से कुछ घटाए नहीं। हाँ, जिस शख्स के जिम्मे हक है वो अगर नादान हो या कमज़ोर हो या लिखवाने की ताकत ना रखता हो तो इसका वली अदल के साथ लिखवाए, और अपने में से दो मर्द गवाह रख लो, अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद कर लो ताकि एक की भूल चूक को दूसरी याद दिला दे। देखिए औरतों की रियायत की जा रही है, यानी औरतें भूल जाती हैं अक्सर क्योंकि उनके ऊपर कई बीमारी के दिन आते हैं, इसी तरह बच्चे की पैदाइश के दौरान भी मेमोरी लॉस हो जाता है, तो ये औरत को अल्लाह ने एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया। और इसी तरह से गवाहों को चाहिए कि वो जब बुलाए जाएं तो इनकार ना करें, और कर्ज को जिसकी मुद्दत मुकर्रर है ख्वाह छोटा हो या बड़ा, ये शर्तें हैं कर्ज देने की, लिखने में काहली ना करो। अल्लाह ताला के नज़दीक ये बात बहुत इंसाफ वाली है और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली है और शक व शुबे से भी बहुत ज्यादा बचाने वाली है। इतनी डिटेल से तो नमाज का तरीका नहीं है जितनी डिटेल से कर्ज देन लेन का, क्योंकि असल दीन मामलात है, अद्दीन अल मामला। फिर आगे फरमाया, ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रा पर कर्ज का मामला कर लो तो इसे लिख लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखे, कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार ना करे जैसे अल्लाह ने उसे सिखाया, बस उसे भी लिख देना चाहिए, और जिसके जिम्मे हक हो वो हक में से कुछ घटाए नहीं। हाँ, जिस शख्स के जिम्मे हक है अगर वो नादान हो या कमज़ोर हो या लिखवाने की ताकत ना रखता हो तो इसका वली अदल के साथ लिखवाए, और अपने में से दो मर्द गवाह रख लो। हाँ, ये और बात है कि वो मामला नकद तिजारत की शक्ल में हो, जो आपस में तुम लेन देन कर रहे हो तो तुम पर इसके ना लिखने पर कोई गुनाह नहीं। खरीदो फरोख्त के वक्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो, और याद रखो कि ना लिखने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए ना गवाह को, और अगर तुम ये करो तो ये तुम्हारे लिए खुली नाफरमानी है। अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। ये है जी ज़ात दायन तो बिदईन निला चले मुसम्मा फ़क्तुबु कर्ज़। खर्च की तीसरी किस्म, पहली क्या थी? इन्फाक फी सबीलिल्लाह, दूसरी थी सूद, तीसरी है कर्ज। कर्ज थोड़ा हो या ज़्यादा, इसकी मुद्दत लिखनी चाहिए। कर्जदार मजमून लिखने के काबिल ना हो तो वली इमला करवाएगा, और कर्ज के मामले में हल्कापन दिखाना बाद के मामलात को बिगाड़ देता है। तो आयात पे अमल लिखिए, किसी के जिम्मे आपका या आप पर किसी का जो भी कर्ज हो इसे आज ही लिखिए, ताकि आपका या आपके वारसा का किसी का हक ज़ाया ना हो। दूसरा, इन आयतों पे अमल कीजिए, चूंकि कर्ज की बात है और अल्लाह ने आपको सहूलत दी है, किसी मोहताज को कुछ रकम कर्ज की दीजिए, और फिर ये सारी शराइत जो इसमें है वो पूरी कीजिए। तीसरा अमल का नुक्ता क्या, कि गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको कौन सी सलाहियत दी है, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसे दूसरों को सिखाइए। क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया, वल यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल। स्किल्स भी नेमतें होती हैं, कुरानी रहनुमाई लेते हैं, पता चला कि माल से मुतल्लिक अहकामात असल में दिल से मुतल्लिक है। जितना दिल पाक होता है उतने माली मामलात पाक होते हैं। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने खसूसियत से किसी को अगर कोई नेमत दी हो और दूसरे लोग मोहताज हों, तो जिसको मिली है वो नेमत पे शुक्र करे और दूसरों की हाजात को पूरा करे, और जिसको नहीं दिया वो सवाल से बचे। तीसरी चीज़, अल्लाह का तकवा हसूले इल्म का पहला सबब है। समझ आई? क्या पता चला कि इल्म लेने का शौक तकवा वालों को आता है, माशाल्लाह आप सब की तरह जो इतने शौक से बैठ के सुनते हैं। अल्लाह ताला आपकी ये शौक को और बढ़ा दे। गौर व फिक्र के चंद गोशे, कर्ज को लिख लेने का हुक्म, दरअसल माल की हिफाजत करने और बात की गलत फहमियों से बचने के लिए, ताकि किसी किस्म का शक व शुबा ना रहे, और अगर कर्जदार अल्लाह से डरने वाला हो तो सही बात लिखेगा। लिहाजा हमें गौर व फिक्र करना है कि मेरा मिजाज कैसा है। फिर अगली बात यह है कि कर्ज के तमाम अहदो पैमान और मामलात को जो लिखना है, इसमें से भी गलती के इम्कान को निकालने की बात अल्लाह ने यहाँ की, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहते कि बाद में झगड़े, इख्तलाफात या गलत फहमियाँ या इल्ज़ाम तराशियाँ हों। अमूमन तो आपस में लेन देन हो रहा है ना, सगे भाई बहन नाराज़ हो जाते हैं, सगे दो भाई कर्ज के मामलों में घबरा जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, ऐसी चीज़ों को पढ़ते सुनते वक्त अपने मामलों की इसलाह की नीयत और दुआ भी कीजिए। और एक चीज़ और भी है, और वो क्या है कि जो कर्ज ले रहे ना वो लिखाए, क्योंकि वो सही लिखेगा। आज बैंक लिखाता है, वो दे रहा होता पता भी नहीं होता, साइन पे साइन लोग करके दे रहे हैं, 10-10 चीज़ों पे पता ही नहीं है, डॉक्यूमेंट से जी कर दें, वो अपने सारी सिक्योरिटीज लिखा लेते हैं आपसे। या ऐसे ही नहीं आपको लाखों और करोड़ों के कर्जे वो दे रहे, वो आपसे असल में ले रहे होते हैं। तो बहरहाल, दूसरे इससे एक और गौर की बात है कि अल्लाह ने औरतों को हर जगह ही सहूलत दी है। अल्लाह ताला हमें एक औरत होने के नाते अपना मजीद फरमा बरदार बना ले। और आखिरी बात इसमें क्या है कि माली मामलात और तकवा, ये चीज़ बार बार आकर हमें बता रही है कि तकवा को बढ़ाना है, ताकि हमारे दूसरे मामलात भी दुरुस्त हो जाएं, और हीलाबाजी, हेरा फेरी वगैरह जो है, इन सारी चीज़ों से भी बचना है। आयत नंबर 283, और अगर तुम सफ़र में हो और लिखने वाला ना पाओ तो रहन कब्जे में रख लिया करो। हाँ, अगर आपस में एक दूसरे से मुतमईन हो तो जिसे अमानत दी गई है वो इसे अदा करे, और अल्लाह ताला से डरता रहे जो इसका रब है, और गवाही को ना छुपाओ, और जो इसे छुपा ले वो गुनाहगार दिल वाला है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह इसे खूब जानता है। ये है जी खर्च की चौथी किस्म, इसको कहते हैं रहन, प्लेजिंग। माली मामलात को अदल और इंसाफ से लिखना चाहिए, यानी जब कोई आपको कर्ज भी नहीं दे रहा, सूद आपने लेना नहीं है, तो फिर कुछ अपनी बिलोंगिंग को, चीज़ को, घड़ी को, चूड़ी को, चीज़ कीमती है वो दे के कर्ज ले लो, फिर जब पैसे दोगे तो वो चीज़ वापस ले आओगे। ये भी एक किस्म का सोल्यूशन दिया गया। तो अगर आप नोट करें ना, तो कर्ज की चार मुमकिन सूरतें हम पढ़ चुके हैं। 261 बकरा में अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का तस्करा शुरू हुआ और जो चलता गया आगे तक। फिर 275 में सूदी लेन देन की बात हुई, 282 में सूद नहीं लेना कर्ज ले सकते हो, और 283 में अगर कर्ज ना मिले तो कुछ रहन ले ले। ये खर्च की चार मुमकिन सूरतें अल्लाह ताला ने दिखाकर हमें बता दिया कि अल्लाह ताला कितना माली तौर पे आपको मुझे सिक्योर रखना चाहते हैं, क्योंकि माल के साथ तो दुनिया चलती है। तो दुनिया में अगर ये चीज़ें, अगर हमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगी तो हम कैसे चलेंगे? इसीलिए फिर ये सब कुछ कुरान में। आप कुरान पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है, आपको ऐसे नहीं लग रहा आपको इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ रहे हैं, हुकूकुल इबाद की बुक पढ़ रहे हैं? ये मैं आप में से पहली दफ़ा पढ़ने वालों को कह रही हूँ, तो अल्लाह का शुक्र कीजिए। हम बड़े क्या बूढ़े होने वाले हो गए, अभी तक हमें नहीं पता कुरान में है क्या, अमल कब करेंगे। अब आगे आखिरी रुकू है सूरत बकरा का, 284 है। आसमान और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह ताला ही की मलकियत है, तुम्हारे दिलों में जो कुछ है इसे तुम जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह ताला इसका हिसाब तुमसे लेगा, फिर जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे सजा दे, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आमन और रसूल भी माउन जिला ही में रब ही, रसूल ईमान लाया उस चीज पर जो इसकी तरफ अल्लाह ताला की जानिब से उतरी, और मोमिन भी ईमान लाए, ये सब अल्लाह ताला और इसके फरिश्तों पर और इसकी किताबों पर और इसके रसूलों पर ईमान लाए। इसके रसूलों में से किसी में हम तफरीक नहीं करते, उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और इताअत की, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं ऐ हमारे रब, और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी जान को इसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता, जो नेकी वो करे वो उसके लिए, और जो बुराई वो करे वो उस पर है। ऐ हमारे रब, अगर हम भूल गए हों, दिल से दुआ कीजिए, यहाँ दुआ का मौका है, अपनी सारी कमियों बेशियों खताओं को जहन में रखिए। ऐ हमारे रब, अगर हम भूल गए हों या खता की हो तो हमें ना पकड़ना, ऐ हमारे रब हम पर वो बोझ ना डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला था, ऐ हमारे रब हम पर वो बोझ ना डाल जिसकी हमें ताकत ना हो, और हमसे दरगुजर फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम कर, तू ही हमारा मालिक है, हमें काफिरों की कौम पर गलबा अता फरमा। आमीन। कितने खूबसूरत पैगाम पर सूरत पूरी हो रही है। कैसे अल्लाह ताला आपको मुझे सूरत के आखिर में एक पैगाम देता है, आइए जरा इन आयात पे अमल की बातें लेते हैं। सूरत बकरा के आखिरी दो आयतें रात में पढ़ा करें, क्योंकि ये पढ़ने वाले के लिए किफ़ायत करेंगी। आज इस बात की कोशिश कीजिए कि किसी भी नेकी या अच्छे काम अमल के बाद अल्लाह ताला से मगफरत मांगें, क्योंकि आयत की तरतीब पे गौर कीजिएगा, आयत में क्या है, समेना व अताना गुफरान का रब्बाना वलैकल मसीर। तो इस आयत पे अमल करते हुए पहले किसी नेक काम को कीजिए, फिर अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे, फिर अगली बात है आज अपनी जुबान या माल या आज़ा जो भी हो सके इनके जरिए कोई नेक काम कीजिए, फिर दुआ मांगिए, इस तरह आपकी दुआ के कबूल होने की ज्यादा उम्मीद है। कुरानी रहनुमाई लेते हैं, गवाही छुपाने वाले का दिल गुनाहगार है तो झूठी गवाही देने वाले का क्यामत के दिन क्या हाल होगा, इस पे गौर करिए। फिर अल्लाह ताला की बात सुनना और इसे मानना इसकी मगफरत के हसूल का सबब है। अल्लाह ताला की दोस्ती दुश्मनों पर गलबे का सबब है, ये गाइडलाइन लीजिए। गौर व फिक्र के गोशे इसमें चंद नोट करते हैं। अल्लाह ताला ने कर्ज की अदायगी के वक्त तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया, इसीलिए हकूकुल एबाद का तकवा ज्यादा मुश्किल है हकूकुल्लाह के तकवे से। मराज है कि अल्लाह के साथ बंदा फिर भी इस मामला सही कर लेता है, लेकिन बंदों के साथ नहीं करता, इसको जरा सा समझना है। और फिर अल्लाह ने गुनाह के साथ चूंकि ख़ास तौर पर दिल का जिक्र किया है, फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, इसलिए कि गवाही छुपाना दिल का अमल है, और गोश्त का ये वो लोथरा है कि जो दुरुस्त हो जाएगा तो पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लेज की बात है, तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को ढूंढिए, देखिए अगर आपके पास कुछ माल रखा हुआ है, किसी भी सूरत में कोई चीज़ है तो उन लोगों को दे दीजिए जिनको उसकी ज़रूरत है। प्लेज में उनकी कोई चीज़ रख लें अगर आपको लगता है कि ये बाद में नहीं देंगे, लेकिन याद रखिए कि हमारा माल बैंकों में रखने के काबिल नहीं है, हमारा सोना चांदी लॉकर्स के लिए नहीं है। आज हमारे उम्मत मुस्लिमा के ड्रॉबैक्स में एक बहुत बड़ा ये है कि हम अपने माल पे सांप बन के बैठे हुए हैं, बैंकों में पड़ा, वो उनको फ्लरिश कर रहा है, वो आपको 1-2% दे भी दें तो नाजायज, खुद उसमें वो पता नहीं 99% कमा रहे हैं, और आपको अपने सगे भाई बहनों पे एतबार नहीं है, दीन की कॉज पे नहीं, कर से हंसना दीजिए। कई प्रोजेक्ट्स होते हैं कई जगहों पे, आपके शहर में तो मुझे नहीं पता, पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जिनको माल चाहिए, आप बैक होम्स को ढूंढिए, लोगों को थोड़ा थोड़ा कर्ज दे दिए, फिर ले भी लिया करें, ये शराइत पूरी करें, शर्त है, तो आपका पैसा तो मिल ही जाना है वापस, लेकिन वो मल्टीप्लाई होगा। कई दफा कुछ चीजें रखी होती हैं, ऐसी चीजें जो आपने हज के लिए रखी है या बच्चों की शादी के लिए रखी है, अभी नहीं चाहिए तो उसको इस तरह से यूज कीजिए, देखिए इफ यू विल नॉट यूज इट यू विल लूज इट। कहते हैं कि चींटियों का रिस्क आखिर में चिड़िया खाती है, सारी जिंदगियां जमा कर करके हम दुनिया से चले जाएंगे और हमारा माल आगे खड़ा होगा हमसे हिसाब मांगने के लिए। फिर इसी तरह से यहाँ समय ना व ताना की जो बात थी, इस पे अपने लिए लिखिए कि पूरी कोशिश करूंगी कि जो बात सुनो उसको मानो। पहले पारे में क्या पढ़ा था, यहूद का कॉल, समय ना वह सही ना वो श्री बुफी कुलूबिहिमुलिजल, तो हमने उसको नहीं इसको अपनी जिंदगी में दलील बनाना है। और एक बात, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह से कभी नाराज ना हुआ करें कि मेरे पे ये बोझ क्यों डाल दिया, मुझे बीमार क्यों कर दिया, मेरे बच्चे को ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी वुस्सत से ज्यादा नहीं आजमाता। वो ब्लड प्रेशर चेक करने वाले बोझ डालते रहते डालते रहते डालते रहते, ऐसे लगता है भी जान निकल जाएगी तो एकदम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो आपका ब्लड प्रेशर देख रहे हैं ना। अल्लाह ताला बाज दफा आपको मुझे मुश्किल हालात में डालकर, कई प्रॉब्लम्स है छोटे बड़े डाल के चेक कर रहा होता है कि तुम्हारा कहले पर कितना है, तुम कितना प्रेशर ले सकते हो, और ऐसे वक्त में सिर्फ वही बर्दाश्त करता है जो कूल और हाँ, अदरवाइज तो बंदा थोड़ी सी बात पे ही घबरा जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इसमें हमने जो पढ़ा उसमें हमें खैर दे। आपने नोट किया है कि जहाँ खैर की बात है नेकियों की बात आई तो लहा, और जब गुनाहों की बुराइयों की बात है तो अलैहा कह दिया, इससे क्या अमल निकलता है कि बंदा जो नेकी करता है ना उससे उसको दुनिया में भी खुशी और मसरत मिलती है, आखिरत में जन्नत बाद में मिलेगी, और जो गुनाह करता है वो अला बोझ प्रेशर दिल पे बोझ गुर्दों पे बोझ और जो शुगर और जो बीमारियां होती हैं, यानी गुनाहों के नतीजे में दुनिया में भी जिंदगी बोझल हो जाती है और आखिरत तो बाद की बात है। और फिर यहाँ अल्लाह ने वाफ वन्ना कहा है, इसका ताल्लुक अल्लाह तेरे और मेरे बीच में होने वाली कोताहियाँ और गलतियाँ हैं जो तू जानता है कोई नहीं जानता, तू मट्टी डाल दे माफ़ कर दे। इस पर अगर आप अल्लाह के नामों में से अलफ सुन लें, अमेज़ बल अस्माउल हुस्ना बड़ी खूबसूरत सीरीज है अल अफ, तो आपको पता चलेगा कि गुफरान अल्लाह के नाम अल गफूर अल गफ्फार में और अल अफ में क्या फ़र्क है। अभी यहाँ अभी रहे अलफ में अल्लाह का बंदे के साथ मामला, उसकी कमी बेचियाँ, अल्लाह मेरी नमाजों की कमियाँ, मेरे फलां 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 फलां, लेकिन जब वो कहते हैं ना वाग़फ़िर लना, तो ये वो गलतियाँ जो हमारे और दूसरे बंदों के बीच में होती हैं, हमारी बुराइयाँ बुरे आमाल, अल्लाह तो उनको हमारी बुराइयों का ना बताना, और आखिर में वरहमना मुस्तकबिल में हम पर मेहरबानियाँ फरमा दे, अपनी तौफीक से अपनी रहमत से हमें मजीद गुनाहों में पड़ने से बचा दे। तो उलमा कहते हैं कि गुनाहगार तीन चीज़ों का मोहताज होता है, लिख लें, एक अल्लाह ताला बंदे की जानिब से अपने हक में होने वाले गुनाह को माफ़ कर दे, दूसरा इसके गुनाहों की पर्दापोशी करके बंदों से छुपा ले और इसकी वजह से इसे लोगों में रुसवा ना करे, और तीसरा ये कि उसे बचा ले और इस जैसे किसी और गुनाह में मुलव्वस ना होने दे। अल्लाह आपको मुझे इन तीनों दौलतों से नेमतों से फैज़याब कर दे। चलिए यहाँ अल्लाह ने सूरत पूरी की, अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, सूरत आले इमरान। हमने सूरत फातिहा के आखिर में एक बात देखी थी, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी अनअमता अलैहिम मतलूब था कि उम्मते मुस्लिम ऐसे काम करे कि उन पर अल्लाह ताला के इनामात हों, गैरिल मग़दूबी अलैहिम, और दूसरा वलद्दालीन। इन दो के बारे में आम तौर पे मुफस्सरीन ने माजी के दो गिरोहों यहूद और नसारा को लिया। सूरत अल बकरा में हमने यहूद के हालात पढ़ लिए और अब हम सूरत आल इमरान में नसारा के हालात पढ़ेंगे। ये तो था रब्त उस चीज का जो के आप मैं सूरत बकरा से सूरत आल इमरान पे लेके चलेंगे। अब चंद बातें सूरत आल इमरान के लिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना इमरान थे, आले इमरान से मुराद हजरत ईसा की निन्हाली फैमिली, और नबियों के नामों में से कुछ सूरतें जो कुरान में आगे आएंगी, यहाँ एक नबी के खानदान का नाम है। 91 आयतें हैं सिर्फ इस सूरत की, इस बारे में बाकी अगली में है। पहली बात है कि ये सूरत दुआओं से भरी हुई है। दूसरी बात है कि इस पूरी सूरत में कोई एक हुक्म भी नहीं है। आप बेफिक्र होके सुने, ये ना फिक्र हो कि हाय सुना तो मानना पड़ेगा। दोनों सूरतों में रब्त भी है। सूरह बकरा का आगाज भी अलिफ लाम मीम से था, इसका भी अलिफ लाम मीम से है। उसके शुरू में कुछ बातें ऐसी थी कि जिसको पढ़ने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि अल्लाह सुबहान ताला ने हिदायत के एतबार से लोगों को कितने गिरोहों में डाला है। इस सूरत में भी आप यही देखेंगे। इसी तरह दोनों का अख्तिताम भी दुआओं से होगा। तो ये चंद चीज़ें सूरत आले इमरान से मुतल्लिक थी। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ताला कुरान और मोमिनीन की सिफात, आयत नंबर 1 से 9 में। अलिफ लाम मीम। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सब का निगेबान है, जिसने आप पर हक के साथ इस किताब को नाजिल फरमाया, जो आपसे पहले की तस्दीक करने वाली है। इसी ने तौरात और इंजील को उतारा था, इससे पहले लोगों को हिदायत करने वाली बनाकर, और कुरान भी इसी ने उतारा। जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफर करते हैं, इनके लिए सख्त अजाब है, और अल्लाह ताला गालिब है, बदला लेने वाला। यकीनन अल्लाह ताला पर जमीन और आसमान की कोई चीज़ पोशीदा नहीं। वो माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह की चाहता है बनाता है। सोचिए अपनी सूरत को, आपकी मेरी शक्लो सूरत किसका फैसला? अल मुसव्विर का। इसके सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं, वो गालिब है और हिकमत वाला है। वही अल्लाह ताला है जिसने तुझ पर किताब उतारी, जिसमें वाज़े मजबूत आयात हैं, जो असल किताब हैं, और बास मुतशाबे आयतें भी हैं। बस जिनके दिलों में कजी है, वो तो इसकी शुबे वाली आयतों के पीछे लग जाते हैं, फितने की तलब और इनकी मुराद की जस्तजू के लिए। हालांकि इनकी हकीकी मुराद को सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता, और पुख्ता और मजबूत इल्म वाले यही कहते हैं कि हम तो इन पर ईमान ला चुके हैं, ये हमारे रब की तरफ से हैं, और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद लोग ही हासिल करते हैं। दो तरह की आयतें, दो तरह के लोग। फी कुलूबिहिम ज़ैगुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिगाल फितना वब्तिगाई तावीलिही। याद रखिए, कुरान सुनते हुए भी और पहले दौर की चीज़ों को देखते पढ़ते हुए भी हमेशा जहन में रखिए कि कुरान से आपको वही मिलेगा जिसकी नीयत से आप सुन रहे हैं। आप हिदायत की तलब से आप सुन रहे हैं तो हिदायत मिलेगी, इल्म के लिए पढ़ रहे हैं तो इल्म मिलेगा। और अगर आप नुक्ताचीनियाँ करने, अगर आप कुरान पे एतराज़ करने, दीन बड़ा मुश्किल है इस नीयत से पढ़ेंगे, तो आपको वही मिलना है जो आप सोच रहे हैं। तो हमेशा कुरान पढ़ते खोलते वक्त दिल दिमाग खाली रख के पढ़ें। किताब इलाही के दो असूल याद कीजिए, शक और शुबे में नहीं पढ़ना, वाज़ेह अहकामात पर अमल करना है। और फिर आगे एक दुआ है जो आपकी मेरी ज़ुबान पर रहनी चाहिए हर वक्त, क्योंकि गाइडेंस इज़ अ गिफ्ट। हिदायत एक हदिया है, और कायनात की सबसे कीमती चीज़ हिदायत है। वो चीज़ कीमती होती है, उसके खो जाने का डर होता है ना। तो दुआ करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिल टेढ़े ना कर दे, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। यकीनन तू ही बहुत बड़ी अता वाला है। ऐ हमारे रब, तो यकीनन लोगों को एक दिन जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं। यकीनन अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। काफिरों को इनके माल और इनकी औलादें अल्लाह ताला के अजाबों से छुड़ाने में कुछ काम ना आएंगी। ये तो जहन्नुम का ईंधन है। अल्लाह ताला हमें आपको जहन्नुम का ईंधन बनने से बचाए। क्या पता चला अमल की चंद बातें? पहली तो बात है कि सूरत आले इमरान पूरी पे गौर व फिक्र की नीयत कीजिए। इस सूरत पे ज्यादा डिटेल्स नहीं है, दिल से सुनने वाली बातें हैं। क्यामत के दिन इस सूरत की सिफारिश लेने की नीयत से इसको पढ़िए। आज आपने मैंने कसरत से एक दुआ मांगनी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, क्योंकि इसमें वर्रासिखून फिल इल्म की बात हुई, इल्म में रसूख पाने वाले लोग। और दूसरी दुआ जो आपकी मेरी जुबान पे रहे, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। साबित कदमी बहुत जरूरी है हिदायत के रास्ते में। एक गलत मोड़ आपको मंजिल से दूर ले जाता है। कुरान की रहनुमाई, अगर आप कोई गुनाह करना चाहे तो सोचिए क्या ऐसी कोई जगह पा सकते हैं जहां आप अल्लाह ताला की निगाहों से ओझल हो जाएं, क्योंकि इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शय्युन। फिर आपकी जिस्मानी शक्ल व सूरत अल्लाह सुबहान तआला की जानिब से है, इसलिए कहिए रदीतु बिल्लाहि रब्बन, ए अल्लाह मैं अपनी शक्ल व सूरत पे राजी हूँ। और अगली बात जो खास तौर पे यहाँ कुरान की रहनुमाई से मिल रही है, क्या है कि वाज़े दलील को छोड़कर मुतशाबे गैर वाज़े अल्फाज से दलील पकड़ना, ये टेढ़े मेढ़े दिलों वालों की बात है। अल्लाह ताला आपको मुझे ऐसे लोगों में शामिल ना करें। गौर व फिक्र की चंद चीज़ें, तौरात और इंजील का जिक्र किया क्योंकि वो भी अल्लाह ने उतारी थी। हाँ, आज उसके अंदर कमी बेशियाँ हो गई, इसलिए वो किताबें हुज्जत नहीं है। मुसद्दिक अल्ली मा बैना यदैह की बात हुई, इससे भी पता चलता है कि कुरान पाक पिछली आसमानी किताबों की तस्दीक करने वाला है और उनको मानने वालों को दावत देता है कि लेटेस्ट वर्जन ले लो। फिर इसी तरह से गौर व फिक्र करने से जिद्दोजहद का शौक बढ़ता है, अमल की राहें आसान होती हैं, इसलिए गौर व फिक्र करते हुए अमल वाली आयतों पर ज़्यादा वक्त लगाना चाहिए। और ज़ैगुन फी कुलूबिहिम ज़ैगुन, दिलों का टेढ़पन बंदे को बातिल की तरफ ले जाता है। कुरान पढ़ पढ़ा कर भी उसको हिदायत से ज़्यादा गुमराही मिलती है। अल्लाह करे कि आप और मैं ऐसे लोगों में शामिल ना हों, और कुरान को पढ़कर सिर्फ एक ही दुआ किया करे कि अल्लाह इससे मुझे हिदायत दे दे और मेरी खराबियाँ मेरी कमियाँ इससे दूर हो जाएं। और आखिरी बात, रासिखून फिल इल्म, पुख्ता इल्म वाले, पक्की इल्म वाली बात हो, जमी हुई बात हो। उर्दू में कहते हैं असरो रसूख, पहाड़ों के गढ़ने को जेन में लाइए। अल्लाह ताला हमें इल्म को लेकर इस तरह अखज़ करने वाला बना दें कि हम फिर इसके ज़रिए से दुनिया में जब निकलें तो लड़ खड़ाएं ना। आगे चलते हैं आयत नंबर 10 से 15। इन्नल्लज़ीना कफरू लन तुग़नियन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैय्या। और यहाँ आपको भी से अलर्ट दे दूँ, इस हिस्से के दौरान वो आयत आ रही है जो आज बहुत सारे लोगों की कमजोरी है, और वो क्या, दुनिया, दुनिया की चीज़ें, जुजिन लिन्नास हुब्बु शहवात। तो उस पर ज़रा गौर कीजिएगा, जैसा आले फिरौन का हाल हुआ और जो इनसे पहले थे जिन्होंने हमारी आयतों को छुटलाया, फिर अल्लाह ताला ने भी इन्हें इनके गुनाहों पर पकड़ लिया, और अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। काफिरों से कह दीजिए कि तुम अनकरीब मغلوب किए जाओगे और जहन्नम की तरफ जमा किए जाओगे, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। यकीनन तुम्हारे लिए इबरत की निशानी थी इन दो जमातों में जो गुथ गई थी। एक जमात तो अल्लाह की राह में लड़ रही थी, गज़वे बदर की तरफ इशारा, और दूसरा गिरोह कुफार का था, वो इन्हें अपनी आंखों से अपने से दुगना देख रहे थे। और अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी मदद से कभी करता है, यकीनन इसमें आंखों वालों के लिए बड़ी इबरत है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवात, मरहूब चीज़ों की मोहब्बत लोगों के लिए मुज़य्यन कर दी गई है, जैसे औरतें और बेटे और सोने और चांदी के जमा किए हुए खजाने और निशान लगे हुए घोड़े और चौपाए और खेती। ये दुनिया की जिंदगी का सामान है, और लौटने का अच्छा ठिकाना तो अल्लाह ही के पास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, क्या मैं तुम्हें इससे बहुत बेहतर चीज़ ना दूँ? तकवा वालों के लिए इनके रब के पास जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और पाकीज़ा बीवियाँ हैं, और अल्लाह की रजामंदी है, सब बंदे अल्लाह की निगाह में हैं। बस ये लिस्ट तैयार कर लीजिए आयत 14 में, मालो दौलत, ज़मीन जायदाद, बेटे, गाड़ियाँ, औरतें, घर, क्या आज हमारी ज़िंदगी इसी में तो नहीं गुजर रही? क्या हम सारा इन्हीं चीज़ों को लेकर अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त तो ज़ाया नहीं कर रहे? तो इसलिए आज इन आयात पर अमल देखिए, अपना कोई गुनाह याद कीजिए और फौरन ही इस्तग़फ़ार कीजिए, क्योंकि फ़ाख़ज़ख़ुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम की बात आई। दूसरी बात, अपने प्यारों में एक मैसेज भेजिए कि आखिरी इंजाम मुत्तकियों का बेहतर है। आइए इस रमज़ान से तकवा की दौलत हासिल करें। तीसरी अमल की बात है कि दुनिया की जायज़ लज्जतों से फ़ायदा उठाते रहिए, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ मांगिए कि आपका दिल इन लज्जतों में गिरफ्तार ना होने पाए, क्योंकि ज़ुय्यिना लिन्नास। आज हमें दीन के नाम पर एक सोच दी गई और ये पिछली सदी में कुछ ज्यादा ही हुई। ना अच्छा खाओ, ना अच्छा पहनो, ना अच्छा घर, ना कुछ। नतीजा क्या हुआ? ऐसा काम करने वालों को नंबर एक लोग मशकूक नजरों से देखते हैं, उनको गैर मुत्तकी ख्याल करते हैं। नो वरीज, ना करे। कोई आम बंदा ऐसा करे तो इट्स ओके, लेकिन जो लोग दीन दे रहे होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि दीन का न्यूट्रल वर्जन दे। जो जायज है अल्लाह ने जायज करार दिया, आप क्यों नाजायज करते हैं? आपको किसने हक दिया कि आप कड़े हुए और चमकों वाले कपड़े सिर्फ शादियों में पहने? माइंडसेट है ना। ये वेडिंग ड्रेसेस, ये फॉर्मल ड्रेसेस, ये इनफॉर्मल ड्रेसेस, ये नाइट ड्रेसेस, ये तो कपड़े बेचने वालों की कैटेगरी है। इस्लाम ने तो नहीं ऐसा कहा। हमारा माइंडसेट देखिए क्या बन चुका है। दीन के साथ जाली सादगी, नकली मसनू सादगी, और जो आपको सिर्फ दरसों में आता देखे वो कहेंगे आप कितनी सादा मिजाज है, और वही जब आपको किसी शादी में देखे तो पहचानेंगे भी नहीं। जालपन है ये है दो नंबरापन। आपके दूसरों को नेक बन के दिखाते हैं, कोई एक कुरान की आयत हदीस दिखा दीजिए कि जिसमें ये लिखा हो कि आप गोटे वाले कपड़े पहन के कुरान नहीं पढ़ सकते। ये है वो चीज जिसने लोगों को ये करने से तो रोका नहीं, दीन छोड़ दिया। खाइफ रहते हैं। और दीनदार इतने क्रिटिकल, इतने क्रिटिकल अल्लाह की बना क्यों कि जी ये पहनना ही गुना है। और इसमें ऐसी रिवायतें, और मैं नाम नहीं लेना चाहती, कुछ लोगों की लिखी हुई किताबें कुछ कल्चर में बड़ी मारूफ हैं, तो उसमें ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि जिसको पढ़ पढ़ के लोग बिल्कुल गिल्ट में चले गए। बैलेंस रहिए। अच्छा कपड़ा है ना, सिर्फ इसलिए आप उसको पहनना छोड़ना कि ये पहन लिया तो लोग कहेंगे ये इतना अच्छा कपड़ा पहन के दर्स सुनने आई है। मैसे आप आए हैं पढ़ने इधर, तो आप एक अच्छा सा सूट है जो घर में तो पहन आए, और आपके लोग कहेंगे ये कोई शादी में आई है। इस नियत से कभी ना छोड़े। हाँ, अगर वो पहन कर आपकी तवज्जो उधर ही जा रही है और आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तवज्जो कम हो रही है, तो ना पहने। सेम थिंग है, जान के ऐसा रूप धार के बैठना कि लोग आपको अच्छा समझे, ऐसा कभी ना करें। आपकी तबीयत में ऐसे तो ऐसे ही रहिए, ईजी गोइंग फील कीजिए। आप जब भी किसी चीज को अहमियत देते हैं ना, तो हम उसके लिए एहतमाम करते हैं। घर का भी यही मामला है। लोग कहते हैं क्या बड़ी गाड़ी नहीं ले सकते, आरामदेह गाड़ी में नहीं बैठ सकते? बैठ सकते हैं, अल्लाह ने दी। लोगों को क्या दिख रहा है, आपकी 1 लाख की गाड़ी? आपके पास तो 5 लाख की गाड़ी लेने के भी रिसोर्सेज थे। मिसाल है, आपने 2 सोने की चूड़ियां पहनी, लोगों को आपकी 2 दिख रही हैं, उनको पता ही नहीं आपके पास तो 20 पड़ी हैं घर में, 10 पड़ी हैं। आपने 12 में से 2 पहनी है, आप कैसे किसी का तकवा डिफाइन करेंगे? तो आपका मेरा फर्ज क्या है, डोंट बी जजमेंटल लिमा तो हर जी मुमा हल्ला, और इन चीजों से बेन्यास हो जाए ना। ये तकवा है और ना ये फतवा है। फिर अगली बात नोट कीजिएगा, और जो लोग जायज चीजों से फायदा उठा लेते हैं ना, वो रिलैक्स रहते हैं। जो सास से खुद भी अच्छा पहनती ओढ़ती है ना, वो अपनी बहुओं पर इतनी तनकीद नहीं करती, क्योंकि उनको होता है मैं भी कपड़े बनाती हूँ, ये भी बना रही है, ये भी पहनती है, मैं भी पहन लूंगी, मैं अपना लिया बेटा आपका भी ले लिया। जो सासे नहीं पहनती वो हर वक्त बहू को मुजरिम नजरों से देखती है, यानी उसको मुजरिम साबित करती है, खुशकी आने लगती है। आप ऐसे गंदे मंदे फिर रहे हो, सुस्ती उबाखियां आती हैं, और आप जरा नहा धो के कंघी कर लें, बाल साफ कर लें, चेहरे को साफ कर लें, क्या फ्रेश नहीं फील करते? आप यहाँ आने से पहले कंघी वंगी करके आए हैं ना, घर में इस वक्त आपकी क्या हालत होनी थी, माशाल्लाह, सर धाड़ मुंह फाड़। तो घर वालों के नसीब में ये, अब हम क्या करें, घर में भी साफ सुथरे रहा करें। ठीक है, चलिए आगे चले। कुरानी रहनुमाई, मालो औलाद की कसरत के जरिए नहीं, बल्कि अमल सवाले के सबब हम जन्नत में जा सकेंगे, इसलिए इनको बढ़ाने की कोशिश करनी है। गुनाह दुनियावी और उखरवी दोनों अजाबों का सबब बनते हैं। शहवत परस्ती और ख्वाहिश परस्ती नफ्स का मुकाबला करने का सबसे बड़ा तरीका आखिरत की याद है। उम्मीद रखी जाए कि जो इस दुनिया में बुराइयों से बचेगा, आखिरत में अल्लाह ताला उसको बहुत अच्छा देगा। फिर अगली बात गौर व फिक्र की नोट कर लेते हैं। दूसरों के रंग ढंग, उनकी चमक धमक, उनकी कामयाबियों से मरूब नहीं होना, क्योंकि लन तुगनियान हो अम्बाल हूँ वला औलाद हूँ मिन अल्लाह शैयन। फिर अगली बात लिखिए कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जिसको चाहता हूँ अपनी नुसरत से मदद दे देता हूँ, तो अल्लाह ताला छोटे गिरोह को ज्यादा बड़ा कर दे, बड़े को छोटा कर दे, ये अल्लाह का इख्तियार है। आप अल्लाह से कसरत नहीं मांगा करें, बरकत मांगा करें। और आखिरी बात ये है कि शहवात और शुबहात को छोड़ दें तो आपको हिदायत मिल जाएगी। अल्लाह ताला आपको मुझे हिदायत वाला बना दे। आगे बहुत ही खूबसूरत आयतें जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हमें कुछ ऐसी अच्छी इबादत का हुक्म दिया है जो हम में से हर एक कर सकता है। आयत 16 से 22, मरगूबात से कौन बचेगा। अब ये सारी चीज़ें हैं, इन्हीं में खो भी जाना गलत है। ये भी एक पॉइंट लिख लें कि इनसे रुकना भी नहीं और इन्हीं को मकसद हयात भी नहीं बनाना। आज एक एवरेज औरत हमारे अपने मुल्कों में या दर्जियों के पास जा जा के परेशान है, या उसको कपड़े नहीं मिल रहे, कभी लैसें नहीं मिल रही, फिर उसके मैचिंग जेवर नहीं मिल रहे, और एक शादी की आती है पूरा जिहाद शुरू हो जाता है। दुश्मनों से क्या लड़ाई होनी है, मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। वहां खर्च क्या करना है माल, आप तो अपने घर के कपड़ों पे खर्च करने के लिए एक दूसरे से उलझे पड़े हैं। ये तो जुल्म है। एक एक बंदा, एक एक लाख रुपए का जोड़ा पहन कर एक शादी में गया, हिसाब कैसे देगा। मैं तो अपनी जात पे एक रुपया ना लगाऊं, कभी कभी ना लगाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? हिसाब मुश्किल है। हजरत अली फरमाया करते थे, मैं इस दुनिया की ख्वाहिश क्यों करूं कि हलाल से मिल जाए तो हिसाब तो देना ही पड़ना है, और हराम में मिली तो अजाब होगा। तो अल्लाह ताला से गिना मांगिए, और जितना गिना मांगेंगे उतना ये ज्यादा मिलेंगी। ये भी मैं आपको बता दूं, जिन चीजों के पीछे आप भागते हैं ना, वो चीजें आपसे दूर भागती हैं, हदीस का खुलासा है। और जब आप दुनिया से जान छुड़ाते हैं तो दुनिया आपके कदमों में जलील होके पड़ती है। यही दुनिया जलील होके पड़ती है जिससे बंदा जान छुड़ाता रहता है।